थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि इसराइली जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं और इतना ही नहीं, हम यह देख रहे हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं और वे उसके पास आना नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के जीवन की बातों को हम देख रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए भी परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि आज का वचन हमारे जीवन के लिए होने पाए। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उनके आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रता पन दें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष प्रदान करें, हर एक से बोले और बातचीत करें। इस समय जो बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, किसी प्रकार के तनाव से और दबाव में है, पिताजी आप उनकी भी सहायता करें, उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे, शांति दे ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम अपने अध्ययन को होशे उसके 5 अध्याय से आरंभ करेंगे। अध्याय 5 एक मनोहर अध्याय नहीं है क्योंकि इसमें भी इसराइल के पापों का उल्लेख किया गया है और उन पर आने वाले दंड की चर्चा की गई है। हमें होशे की पृष्ठभूमि नहीं भूलना है। युवा अवस्था में उसने जिस युवती से प्रेम किया था, वह सुख सुविधा और पैसों की लालच में वेश्या बन गई थी। परमेश्वर ने उसे उसी युवती से विवाह करने का आदेश दिया, परंतु 3 बच्चों को जन्म देकर वह फिर वेश्यावृत्ति में चली गई। इस बार होशे मूल्य चुकाकर उसे वापस घर ले आया। वह बहुत दुखी था, उसका परिवार टूटा हुआ था। इसी अनुभव के साथ वह इसराइल को परमेश्वर का दंड सुनाने निकला। उसने कहा कि वह परमेश्वर के दुख को समझता था। उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, अतः परमेश्वर उन्हें अवश्य दंड देगा। इसराइल परमेश्वर से विमुख होता है, परमेश्वर इसराइल से रुष्ट होता है। परमेश्वर इसराइल के याजकों और राजाओं को भी दोष देता है। तो आइए हम सब पढ़ें होशे 5 अध्याय उसके एक पद। होशे 5 उसके एक पद में लिखा है, हे याजकों यह बात सुनो, हे इसराइल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है मिस्पा इसराइल के दक्षिणी पूर्व में था और ताबोर उत्तर दक्षिण का पर्वत था। वे वृक्षों के मध्य मूर्ति पूजा करते थे। इसराइल में सर्वत्र मूर्तियां उपस्थित थी। मेरे प्रियो, अध्याय 4 में हमने देखा था कि याजक भी प्रजा के साथ भ्रष्ट स्तर पर थे। उन्हें तो प्रजा के लिए आदर्श स्थापित करना था, परंतु वे स्वयं ही एक आम मनुष्य के समान भ्रष्ट थे। राजा भी भ्रष्ट थे। आज धर्म शिक्षा में मुक्त विचारों का बोलबाला है। आत्मिक पतन देश का पतन है। इसराइल की यही दशा थी। यह हमारे लिए भी एक चेतावनी है। होशे 5 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। परमेश्वर इसराइल को उनकी पाशविकता के लिए झिड़कता है। उनमें हत्याएं हो रही थी, अहिंसा हो रही थी, वे युद्ध में व्यस्त थे। मिस्र बेबीलोन और अश्शूरों के पूर्वज हाम के पुत्र थे, परंतु यावत के पुत्रों ने श्वेत वस्त्र मानवता को जन्म दिया और बाइबल होने के बाद भी उन्होंने संसार में प्रचारक नहीं भेजे। चीन में, जी हां, मैं कहूंगा कि समाजवाद ने नहीं, परमेश्वर ने द्वार बंद किए। हमें सावधान हो जाना है कि हम परमेश्वर को जगत से अलग नहीं कर सकते हैं, कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। होशे 5 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं एप्रेम का भेद जानता हूं और इसराइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इसराइल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, एप्रेम नाम वास्तव में इसराइल के एक गोत्र का नाम था, परंतु परमेश्वर स्नेह से इसराइल को एप्रेम कहता था। एप्रेम अतः 10 गोत्रों का द्योतक। एप्रेम इसराइल में मूर्ति पूजा का केंद्र था। यरोबाम ने सबसे पहले बेतेल में एक सोने का बछड़ा रखा और फिर सामरिया में दूसरा बछड़ा रखा। ये दोनों स्थान एप्रेम गोत्र के क्षेत्र में थे। बेतेल, जो एक स्थान का नाम है, शायद बिन्यामीन के क्षेत्र में था, परंतु उन्होंने 10 गोत्रों से विद्रोह किया। एप्रेम मूर्ति पूजा का केंद्र था और मूर्ति पूजा उनका सबसे बड़ा पाप था। लिखा है, मैं एप्रेम का भेद जानता हूं और इसराइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इसराइल अशुद्ध हुआ है। यद्यपि सोने का बछड़ा और बाल की मूर्ति एप्रेम के क्षेत्र में थी, संपूर्ण इसराइल अशुद्ध हो गया था और दक्षिणी राज्य पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त किया था और उनके पास परमेश्वर का वचन था, परंतु फिर भी वे परमेश्वर से दूर हो गए थे, वे परमेश्वर की सेवा में नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां घोर अनैतिकता और दुराचार व्याप्त हो गया था, जिसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ा था। परमेश्वर कहता है कि भूमि और पशु भी प्रभावित होंगे। उनकी सिंचाई तकनीकी ने अभी तक रेगिस्तान को गुलाब के समान फलवंत नहीं किया है, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है यशाया 35 उसके एक पद में। होशे 5 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है और इसराइल और एप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। परमेश्वर कहता है कि उत्तरी राज्य के सब गोत्र और यहूदा भी बंधुआई में जाएगा, परंतु एक साथ नहीं। इसराइल अश्शूरों द्वारा बंधुआई में ले जाया गया और 100 वर्ष बाद यहूदा को भी बेबीलोन की सेना ले गई। उस समय से आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका स्वदेश आगमन या लौटना नहीं हुआ है। होशे स्पष्ट कहता है कि जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लाएगा तब संपूर्ण विश्व उन्हें देखेगा और वे शांति में वास करेंगे। होशे 5 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। मेरे मित्रों, उन्होंने परमेश्वर को त्याग तो दिया है, परंतु कष्ट आने पर जब उनके सब उपाय निरर्थक सिद्ध होंगे तब वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परंतु वे परमेश्वर को नहीं पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने अपने को उनसे दूर कर लिया है। मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं और जब कष्ट आता है तो हम उसे ढूंढते हैं, परंतु हम अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगते, अपने आप को नहीं सुधारते और यही कारण है कि परमेश्वर हमसे दूर रहता है। मनुष्य प्रायः परमेश्वर को अंतिम समाधान बनाता है। एक जहाज समुद्र में हिमशिला से टकरा गया। जहाज के कप्तान ने सबसे कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक स्त्री कप्तान के पास आई और कहने लगी, क्या प्रार्थना के लिए हमारे पास समय है? अर्थात अब प्रार्थना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि प्रार्थना हमारा अंतिम कदम होता है। लोग परमेश्वर को स्टेपनी या आग बुझाने का यंत्र समझते हैं। उसकी आवश्यकता तो नहीं है, परंतु अंत समय में वह काम में आएगा। मेरे प्रियो, यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, हम उसके पास ना आकर के अंत समय का इंतजार करते हैं। जब हम मृत्युशैया में हैं, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तब हम उसके पास आते हैं। हमें चाहिए कि हम उसके पास आएं और उसके साथ संगति में बने रहें, ताकि उसके उन आशीषों को हम अपने जीवन में, परिवार में और कलीसिया में देखने पाएं। होशे आगे कहता है, होशे 5 उसके 7 पद में लिखा है, वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है, इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए वे अपरिचित हैं। उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को परमेश्वर के ज्ञान भय में नहीं पाला था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे अपने बच्चों को हर समय परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में रखें, उठते बैठते चलते फिरते सोते समय भी। उन्हें अपने द्वार पर परमेश्वर के वचन को लिखना था। परमेश्वर कहता है कि उनकी संतान तो परमेश्वर को जानती ही नहीं। जी हाँ, आज कई परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। वे स्वयं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं और अपने बच्चों को भी नहीं सिखा रहे हैं। अंततः परमेश्वर यही कहेगा कि वह उन्हें नहीं जानता। होशे 5:8 में लिखा है, गीबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूको, बेतावेन में ललकार कर कहो, हे विन्यामिन अपने पीछे देख। बेतावेन अर्थात बेतेल, विन्यामिन के गोत्र का एक भाग इसराइल से विद्रोह कर चुका था और परमेश्वर कहता है कि चेतावनी का यह वचन संपूर्ण देश में पहुंचे। और तब हम आगे देखते हैं होशे 5:9 में, न्याय के दिन में एप्रेम उजाड़ हो जाएगा, जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इसराइल के सब गोत्रों को दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन्हें चिताने से नहीं चुका था, उसने उन्हें झिड़का परंतु उनके कान पर जू नहीं रेंगे। होशे 5:10 में आगे लिखा है, यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं, मैं उन पर अपनी जल जलाहट जल के समान उंडे लूंगा। मेरे प्रियो, दक्षिणी राज्य ने अपनी सीमा उत्तर में बढ़ा ली थी और उनमें सीमा के विषय विवाद था। यद्यपि होशे उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर ने दक्षिणी राज्य के लिए भी उसे संदेश दिया था। होशे 5:11 में हम पढ़ते हैं, एप्रेम पर अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। एप्रेम ने स्वेच्छा से मूर्ति पूजा स्वीकार की थी, वह भी भेड़ चाल चला था। होशे 5:12 में लिखा है, इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होगा। भविष्यद्वक्ता उपमाओं के द्वारा बातें कर रहा है, ये जो परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान, यह कीड़ा आपके कपड़ों को काटता है। एक व्यक्ति बाजार से कीड़े भगाने की कुछ गोलियां लाया और दूसरे दिन उन्हें लौटाने आया। ये किसी काम की नहीं है, उसने कहा। दुकानदार ने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं पूरी रात कीड़ों को इन गोलियों से मारता रहा परंतु एक भी कीड़ा नहीं मरा। ये कीड़े एक ही रात में आपके कीमती वस्त्र काट देते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं एप्रेम को कीड़े के समान शीघ्रता से नाश करूंगा। तब वह आगे कहता है, यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होगा। लकड़ी की नींव को सड़ने में समय लगता है। मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा, परंतु यहूदा में अभी सड़ाहट हो रही है और उसके पतन में समय लगेगा। मेरे प्रियो, हम पाप से दूर भागें और परमेश्वर के दंड से बचें, अन्यथा हम बहुत ही बुरी दशा में होंगे। होशे 5:13 में हम पढ़ते हैं, जब एप्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। जब एप्रेम ने अपना रोग देखा, जी हाँ, एप्रेम को एहसास हो गया और उसे असाध्य रोग था, वह मरने पर था। तब हम देखते हैं कि यहूदा ने भी अपना घाव देखा। यहूदा को भी अश्शूरों ने घाव दिया था, परंतु उन्हें बंदी बनाने में असफल रहे। तब एप्रेम अश्शूर के पास गया और गारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। उन्होंने सहायता के लिए गलत मनुष्य को चुना, वही तो उन्हें बंदी बनाकर ले गया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हम ये सोचते हैं कि संसार मेरा मित्र है, ये मेरी मदद करेंगे, परंतु हम गलत हैं। परमेश्वर हमारा मित्र है, वही मुझे और आपको बचाता है और जीवन की हर एक सुख सुविधाएं वही उपलब्ध कराता है। यदि आप उसके पास आएंगे तो निश्चय ही आप उसके आशीषों के भागीदार होंगे, नहीं तो आप भी उस पापमय जीवन में नाश होते चले जाएंगे। होशे 5:14 में लिखा है, क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा, मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा, जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा। यहां एक और उपमा है। परमेश्वर कहता है कि वह एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के लिए जवान सिंह बनेगा। मैंने टीवी पर देखा कि शेरनी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है। वे एक मोटी बिल्ली के समान दिखती है। शेरनी किसी भी जानवर को उनके पास नहीं आने देती है। परमेश्वर कहता है कि वह उत्तरी राज्य को शेर के समान फाड़ेगा और दक्षिणी राज्य के लिए वह शेर का बच्चा बनेगा, अर्थात उसके बड़ा होने तक वे बचे रहेंगे, तब वह अपनी माँ के समान खूंखार हो जाएगा। लिखा है, मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा। मेरे प्रियो, एप्रेम कितना भी चीखे पुकारे, परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएगा। वह उनके पाप का दंड होगा और वह उन्हें उनके ही पाप का दंड देगा। परमेश्वर आज भी पाप का दंड देता है, बचना संभव नहीं है। हमने अपनी युवा पीढ़ी को निराश किया है। यौन रोगों का कारण क्या है? परमेश्वर पाप का दंड दे रहा है। जी हाँ, आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन यौन रोग से पीड़ित हैं। उसका कारण यही है कि वे परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आप सबके लिए एक सुंदर अवसर है कि हम इन बातों पर विचार करें। होशे 5:15 में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। मेरे मित्रों, यद्यपि यह अध्याय दंड का है और विषदपूर्ण है, परंतु आशा के साथ समाप्त होता है। इसराइल एक दिन परमेश्वर के पास लौट आएगा, परंतु जब तक वे उसके पास ना आए वह उन्हें नहीं बचाएगा। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 6 में आते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर को इसराइल से शिकायत थी कि उनमें ना तो सच्चाई थी, ना करुणा और ना परमेश्वर का ज्ञान था। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म कर रहे थे। झूठ, चोरी, व्यभिचार, हत्या उनका व्यवहार बन गया था। इस कारण वे विलाप करेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनकी महिमा अनादर में बदल जाएगी। याजकों ने भी परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना था। अतः परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, उसी प्रकार परमेश्वर भी उनके बाल बच्चों को त्याग देगा। जो दशा प्रजा की होगी, वही दशा याजक की भी होगी। वे अवश्य दंड पाएंगे और परमेश्वर उन्हें बंधुआई में भेजेगा। तो आइए हम आगे बढ़ें और अध्याय 6 में देखेंगे, जिसका विषय है, अंतिम दिनों में इसराइल लौट कर आएगा, वर्तमान में इसराइल को पापों का दंड दिया जाएगा। हम देखते हैं, अंतिम दिनों में इसराइल स्वदेश लौटेगा। होशे नबी की पुस्तक 6 उसके 1 में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की अंतिम पुकार थी, परंतु यह भविष्य की बात भी है जब परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। जी हाँ, यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर किया, उसकी मन की इच्छा उन्हें फिर एक करने की है। यह उस हर एक राष्ट्र के लिए एक चेतावनी है जो अपने को मसीही राष्ट्र कहता है और उसके पास परमेश्वर का वचन है। तो हम भी इस प्रकार से कह सकते हैं कि आओ हम यहोवा की ओर फिरें। मेरे प्रियो, यदि आज आपका जीवन पापमय जीवन है, यदि आप आज परमेश्वर से दूर हैं, तो आपके लिए भी यह अवसर है कि आप परमेश्वर से कहें कि आज मैं परमेश्वर की ओर फिरूंगा, मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ दूंगी और मैं सच्चे वचन पर चलूंगी, उसके वचन का अनुसरण करूंगी। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, क्या आज आप भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको क्षमा करके एक पवित्र जीवन देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं जानता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है और आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए लेंगे, ताकि आप परमेश्वर की संगति में बढ़ने पाए और आप उसमें बलवंत किए जाएं। परमेश्वर आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जलमा जिंदगी हमारी यीशु के दिए, जलमा जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल पनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा। आज सूली के तले उसे बुलाना है हमको जल्द।